शॉर्ट केसेस के एग्ज़ामिनेशन में एक बहुत यूज़फुल टिप ये होती है कि आपने चाहे जो भी केस हो ना, अगर वहाँ पे समझ भी ना आ रहा हो तो तब भी जो है ना, डोंट लुक कन्फ्यूज्ड कि मुझे नहीं पता इसमें क्या डिफरेंशियल्स बनाऊँगी, जस्ट स्टार्ट परफॉर्मिंग। जिसमें आपने बेसिक लीजन की एग्ज़ामिनेशन तकरीबन देखें सब में एक जैसी ही होती है, सब में आपने इंस्पेक्शन करना है, पल्पेशन करना है, टॉर्च और हैंड लेंस यूज़ करना है। पल्पेशन आपने हर लीजन की एक ही तरह से करनी है, साइज़ मेजर करना है, अगर कोई स्केल है तो स्केल को रिमूव करना है, अगर कोई वैस्कुलेटिक लीजन है या कोई ऐसा लीजन है जिस पे डाइस्कोपी करनी चाहिए तो डाइस्कोपी करेंगे, अगर कोई ब्लिस्टर बुला है तो उसके ऊपर हमें निकल्स की साइन, बुला स्प्रेड साइन करना होगा। फिर जब नेल्स की एग्जामिनेशन हमने करनी होती है तो फिर नेल्स को अच्छी तरह से देखते हैं, उसके ऊपर टॉर्च, फिर हैंड लेंस के साथ अच्छी तरह देखते हैं, पेरिएंगुलर स्पेस देखते हैं, वेब स्पेसेस देखते हैं। देन फिर उसके बाद फिर हमने रेलिवेंट पे म्यूकोकुटीनियस एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि आपने सारे म्यूकोसास देखने हैं, जहाँ पे लीजन है उसके लीजन लिम्फ नोड्स करने हैं। फिर जब रेलिवेंट की बात आती है ना तो फिर उस पे आपने सोचना है कि इसमें क्या रेलिवेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्डोमिनल या चेस्ट एस्केलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बीपी की जो एग्ज़ामिनेशन है ना वो हर पेशेंट पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यस कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर आपने बीपी नहीं लिया या नहीं बोला तो इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं है। जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के केस के अंदर बीपी अगर नहीं लिया तो इट्स अ बिग वार्निंग साइन कि ये जो है ना केस फेल हो सकता है। वैस्कुलाइटिस के केस में जो है ना बीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के केस में बीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है ना आपने ब्लड प्रेशर हर शॉर्ट केस में नहीं करना, हर शॉर्ट केस का जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है ना बस आपको वो पता होना चाहिए। बाकी म्यूकोकुटीनियस एग्जामिनेशन तो हर शॉर्ट केस का एक ही तरह का है, बेशक आपको केस समझ भी नहीं आ रहा ना, ये सारे स्टेप्स हुए कि जैसे तो आपने जब ड्रिल करनी है ना, जब आपने एग्जामिनेशन प्रैक्टिस करनी है तो उसमें आपने हर रोज़ाना हर शॉर्ट केस के ऊपर ये स्टेप ज़रूर करने हैं कि एट द एंड जब एग्ज़ाम डे हो, चाहे केस समझ भी ना आ रहा हो ना, आपके एग्जामिनेशन से एग्जामिनर को बिल्कुल ये फील ना हो कि आप कंफ्यूज्ड हो या आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये शॉर्ट केस है क्या। आपको जो है ना वो एग्ज़ामिनेशन आप आराम से रिलैक्स होकर करें, फिर डिस्कशन में अपनी डीडीज में जो आपके माइंड में आते हैं ना डीडीज वो बताएं, और फिर वाइवा उसी रिलेटेड पेशेंट आपसे एग्जामिन पूछेगा कि आप क्या एग्जामिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराएंगे। तो इतनी प्रैक्टिस जो है वो तो हमारी होती है कि इन्वेस्टिगेशंस में हमें कहेंगे कि हम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देन बेस लाइन करेंगे, द इन्वेस्टिगेशन फॉर द कॉम्प्लिकेशंस करेंगे। तो हर केस के तकरीबन इन्वेस्टिगेशन सिमिलर ही होते हैं, सब में हमने बायोप्सी करनी होती है, उसके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो करते हैं, बेस लाइन सब में होती है कॉम्प्लिकेशन के लिए भी। देन फिर ट्रीटमेंट जो है वो अगर आपको केस समझ आ गया तब तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ट्रीटमेंट में भी अगर आपने कभी आपने हॉस्पिटल के अंदर एफर्ट लगाई होगी ना शॉर्ट केसेस के ऊपर तो फिर आप इंशाल्लाह मैनेजमेंट का प्लान भी अपना बता सकते हैं। तो दैट इज़ अ टिप कि आपने जो है वो चाहे जैसा भी शॉर्ट केस हो ना उसके अंदर आप कॉन्फिडेंटली एटलीस्ट परफॉर्म करें, बाकी डीडीज और जो थ्योरी रिलेटेड बातें वो तो सारी अपनी पढ़ने वाली और याद करने वाली हैं।